ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है सत्रह अगस्त 1968। पूछा क्या सोच रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब हरेक जीव की आत्मा अपने ऊपर बंडर खा रही है कि पहले हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और क्या ले रहे थे। अभी हम क्या है और किससे वर्षा ले रहे हैं। पहले हम क्या थे, अब क्या है, फिर कैसे हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व का मालिक थे और हम बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया हमारे ऊपर फागी आ गई, जो कि हम रचयिता और रचना को भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता मुझ जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए कि हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले थे। अभी बाप देख रहे हैं हमारे बच्चे आज से 5000 वर्ष पहले राजभाग पा चुके थे और बड़े आनंद मौज में थे। और यही पौधे फिर अब क्या हो गए, कैसे रावण के राज्य में आ गए, क्योंकि पुराने राज्य में तो जरूर दुखी ही मिलता है। रावण राज्य में तुम कितने भटकते रहे, अंधश्रद्धा में आकर बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहां। जब के ठीक कर भीतर में डाल दिया तो फिर मिलेगा कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे कि फां हो गए। ये सब अपने ही अज्ञान के कारण हुआ। इस रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है, सारा भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बनता गया। बाप बच्चों को देखते हैं तो ख्याल होता है कि मेरे बच्चे भक्ति मार्ग में कितने भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए की है, भगवान को मिलने के लिए। भक्ति के बाद में ही भगवान फल देते हैं, ये बात तो कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही बुद्धू बन गए। तो ये अभी ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए, हम क्या थे, फिर कैसे राजभाग किया, फिर कैसे सीढ़ी उतरते रावण की जंजीर में बंधते गए। अपरम अपार दुख भोगे, पहले तो तुम अपरम अपार सुख में थे, फिर बाद में अपरम अपार दुखों में आए। तो दिल में आना चाहिए कि हमको अपने राज्य में कितना सुख था, अभी हम पराए राज्य में हैं तो कितने दुखी हैं। अपना राज्य अर्थात स्वराज्य, स्व आत्मा को कहा जाता है, पर रावण है, पांच तत्व पर हैं और इस पांच तत्वों के पुतले में स्वस्थिति को भूलने के कारण हम देवांग में आ गए। तो पर के वशीभूत हो गए, ये पांच विकार पर हैं, पांच तत्व ये पर हैं अर्थात पराए हैं, अपनी चीज नहीं है। तो देखो इस पुरानी दुनिया में पराए राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं कि पराए राज्य में कितना दुख उठाया, वास्तव में पहले थे तो बहुत अच्छे, पहले पहले तो रावण राज्य में भी जो थे वो सतो थे, अभी वो भी तमो बन गए। अभी तुम बैठे हो, अंदर में ये ख्याल चलना चाहिए कि पहले पहले हम कौन थे, किसके बच्चे थे, बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए, कितने दुख देखी और कितने कितने गंदे गंदे काम किए, ये सृष्टि दिन प्रतिदिन और ही गिरती जाती है। क्योंकि पांच तत्वों का संघात है ना, आत्मा यहां की रहने वाली नहीं है, आत्माएं तो आत्मलोक की रहने वाली है। वहां चार अवस्थाओं से आत्माएं पसार नहीं होती है, सतयुग त्रेता में तुम भी सात्विक स्टेज में थे, अभी तो मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते जाते हैं। तो ये बात बच्चों की स्मृति में आनी चाहिए कि क्राइम कहां से शुरू होता है, देवान में आने से क्रिमिनल बने, बाप देखते हैं ये पौधे पहले पवित्र थे, जिनको राज भाग दिया था, बाद में ये मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अभी तुम फिर से तमो प्रधान से सतु प्रधान बनना चाहते हो तो मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। परंतु याद नहीं कर सकते हैं, बार बार कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। रावण ने देवान में जकड़ लिया है ना, अरे तुम याद नहीं करोगे तो पाप कैसे कटेंगे? याद करना है उसको जो सदा निष्पाप है, सदा शिव कहा जाता है, तामसी तन में आता है तो भी निष्पाप है। एक तो तुम विकारों में गिर करके पतित बने, फिर बाप को गाली देने लग पड़े, रावण राज्य में आकर तुम हमारे दुश्मन बन गए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम माया के संग में आ गए। माया पांच विकारों को कहा जाता है, अर्थात कामियों, क्रोधियों, लोभियों, मोहियों और अहंकारियों के संसर्ग संपर्क में आ गए। फिर तुम इतना गिर पड़े कि जिसने तुमको आसमान पर चढ़ाया उसको तुमने ठिककर भीतर में डाल दिया। तो तुम खुद ही ठिककर भीतर बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए, माया के संग में आकर तुमने ऐसा काम किया है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए ना। बाप रोज रोज कहते हैं, मैं तुमको फर्स्ट क्लास पॉइंट सुनाता हूं, जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ, तो बुला सकते हैं। बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने सदैव ही राजभाग दिया, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे, फिर बाद में तुम रावण राज्य में कैसे आ गए? ये भी तुम्हारा ड्रामा में पार्ट है, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को समझो तो अभी भी ऊंचे पद पा सकते हो। मेरे को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहां पर भले सभी बैठे हैं परंतु बुद्धि की बलिहारी है, किसकी बुद्धि कहां पर है और किसकी बुद्धि कहां पर अटकी हुई है। नहीं तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि पहले हम कहां पर थे और अभी कहां पर हैं। अभी हम पुराने रावण राज्य में आकर गिरे हैं। तो कितने दुखी हो गए। हम शिवालय में थे तो कितने सुखी थे। शिवालय और वैश्यालय, शिवालय कहा जाता है जहां सब देवी देवताएं एक शिव को ही याद करते हैं, और वैश्यालय कहा जाता है जहां सब जाने वालों की बुद्धि एक वैश्या में लगी रहती है और वैश्या की बुद्धि अनेकों में लगी रहती है। तो जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कि तू जानते हो शिवालय में थे तो कितने सुखी थे। अब भी बिचारी थे ना। अभी बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने के लिए, तो भी निकलते नहीं हैं। बाप बार बार पूछते हैं तुम शिवालय में चलोगे। सोच लो फिर वहां ये बिख नहीं मिलेगा। यहां का गंदा खान पान वहां नहीं मिल सकेगा। ये तो जब तुम विश्व के मालिक थे तो कितना ऊंच खान पान रहन सहन था। फिर अभी तुम कहां पहुंच गए। ये बात तुम बच्चे जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अभी फिर से ये अपना राजभाग ले रहे हैं। समझना और समझाना तो कितना सहज है, और ये तो बाप समझाते हैं। ये भी जानते हैं कि सब बच्चे सर्विसेबल नहीं हैं। क्योंकि अगर सब सर्विसेबल बन जाएं तो सबको राजधानी में उच्च पद मिलना चाहिए। परंतु राजधानी में नंबर वार ही होते हैं। तो जरूर सारी अवस्थाओं वाले चाहिए। राजाएं भी चाहिए, रानियां भी चाहिए, ऊंच पद वाले अधिकारी भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, चांडाल भी चाहिए, और इन सबसे जास्ती संख्या प्रजा की चाहिए। तो कोई भी आवे तो समझाना चाहिए हमको फिर से श्रीमत पर राजधानी स्थापन करनी है। 5000 वर्ष पहले भी हमने ये राजधानी स्थापन की थी। तो जरूर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना पड़े। बाप कहते हैं ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया, और जब एक्यूरेट पुरानी दुनिया हो तब ही बाप आवे। बाप बिना तो कोई भी इन बातों को समझा ही नहीं सकता। भगवान इस रथ में हमको पढ़ाए रहे हैं। ये बात भी याद बनी रहे तो भी बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हैं। समझना चाहिए अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं, फिर हम दैवी संप्रदाय बनने वाले हैं। अगर ये ज्ञान बुद्धि में हो तो औरों को भी बता करके आप समान बनावे। बाप समझाते हैं कि पहले पहले तो तुम पूरे मैट चैप्स थे, कितनों की बुद्धि में से अभी भी बंदरों का पागलपन जाता ही नहीं है। ऐसे क्रिमिनल करैक्टर बन गए हैं कि सुधरते ही नहीं है, और उसमें भी आंखों की क्रिमिनलिटी तो निकलती ही नहीं है। एक तो है काम विकार की क्रिमिनलिटी, बड़ा मुश्किल से छूटती है। फिर साथ में और भी पांच विकार है, क्रोध की भी क्रिमिनलिटी कितनी भारी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है। तो ये क्रिमिनलिटी हुई ना, सिविलाइज तो कोई हुआ ही नहीं है। तो बोलो नतीजा क्या होगा? जरूर 100 गुना पाप चढ़ता जाएगा। तेसठ जन्मों में जो पाप किए उनका 1 गुना बोझ चढ़ता था, और अभी बाप आए हैं, बच्चे अंजाम भी करते हैं, बाप बताते भी हैं कि एक बार माफ, दो बार माफ, बार बार तो माफ नहीं होता रहेगा। फिर 100 गुना पापों का बोझ चढ़ता जाता है, बार बार क्रोध करते रहेंगे तो क्या हाल हो जाएगा? बाप समझाते हैं कि अभी तुम रावण के राज्य में तो नहीं हो, है? अभी रावण के राज्य में नहीं है।
जब ज्ञान बुद्धि में
हाँ
नहीं, आपकी ज्ञान जब बुद्धि में रहती है तो रावण से हम बच सकते हैं
ना? प्रश्न है रावण के राज्य में हो या नहीं हो? इसका मतलब कोई राम को पहचान ले, जान ले, मान ले, फिर भी कहे मैं तो रावण राज्य में हूं, रावण को राजा मानता हूं, तो उसको क्या कहेंगे? पहचाना है या नहीं पहचाना है? बाप तो कहते हैं तुम तो ईश्वर के पास बैठे हो, नाम ही है ईश्वर, ईश माने शासन करने वाला, बर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। दुनिया में इतना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला कोई आज तक हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। ऐसा प्यार का शासन करने वाला है। दुनिया में तो जितने भी हिस्ट्री में शासक हुए हैं वो सब हिंसक हुए हैं। बाप को तो देखो 70 साल हो गए बच्चों को समझाते समझाते, अभी भी प्यार से चलाते हैं। तो कहते हैं तुम तो ईश्वर के पास बैठे हो, फिर इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा क्यों नहीं पक्की करते? फिर भी बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, अभी क्रोध मत करो, ये 5 विकार तो तुमको आधा कल्प से गिराते ही आए हैं, याद करना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे ऊंचते ऊंचे हम ही थे। और अभी रावण के संग में आने से सबसे नीचे गिरे भी तुम हो। इन कामियों ने, क्रोधियों ने, लोभियों ने, मोही और अहंकारियों ने तुमको गिराया है। तुम तो पहले देवता थे, तुम्हारे में शुरू शुरू से ये 5 विकार नहीं थे, बाद में संग के रंग में आए हो। तो इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। ये 5 भूत जन्मजात भूत हैं। कब से आए? ये जन्मजात भूत कैसे हैं? कौन है वो निमित्त जो जन्म लेते ही 5 विकारी स्वरूप में इस दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं? पहला है काम का भूत। कौन है जो इस संसार में आने मात्र से ही काम विकार के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है? सतयुग त्रेता में तो नहीं था, था भी तो साकार रूप में नहीं था, उसका नाम ही था अनंग। देवताओं के अंग काम विकार की विकृति में नहीं थे, जब से द्वापर शुरू हुआ तो पहले पहले ये काम का भूत आया। और आते ही संग का रंग लगाना शुरू कर दिया। पहले पहले भारतवासी ही चपेट में आ गए, ढेर के ढेर भारतवासी कन्वर्ट होकर के अरब देश में चले गए, जिनकी दृष्टि वृत्ति व्यभिचारी बन गई। उनको व्यभिचारी किसने बनाया? कौन निमित्त बना? जरूर कोई आत्मा है जो इस सृष्टि पर आने मात्र से ही स्वयं तो व्यभिचारी है ही, भारतवासियों को भी व्यभिचारी बनाई देती है। कच्ची कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं ही उनके प्रभाव में आ जाती है और कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा देकर के चली जाती है। इन पांच भूतों में ये है मुख्य भूत। तुम बिल्कुल बंदर से भी बदतर बन गए। कल तो तुम पूरे बंदर थे, तुम्हारे में पांचों विकार थे। अभी शिवालय में जाने के लिए पांच विकारों को निकालना है तो अब इस वैश्यालय से दिल हटाते जाओ। बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। कहां बाप और कहां ये पांच भूत? बाप के संग के रंग में आने से तुम कितने चेंज हो जाते हो। मनुष्य से, राक्षस से, बंदर से मंदिर लायक देवता बन जाते हो। और कहां ये राक्षस संप्रदाय? तुम्हारे पुराने दुश्मन। अभी तुम बाप को याद करेंगे तो बाप के घर पहुंच जाएंगे। वहां रावण राज्य नहीं होता, सदैव एक रस स्थिति रहती है। तुम शांत स्वरूप आत्मा थे, बाप के सिवाय उस शांति धाम जाने का रास्ता और कोई भी बता ही नहीं सकता। ये गुरु आदि लोग जो अपने को परमात्मा कहलाते हैं उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। हिरण्य अर्थात सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माओं के काश्य को अर्थात तेज को, पवित्रता को पीने वाले हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप कहा जाता है।
अपने आप को भगवान समझते हैं।
कितना घात करते हैं। बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप वो हैं जो अपन को भगवान कहलाते हैं। वो हैं सबसे बड़े दैत्य। किसकी संतान है? है दिति की संतान दैत्य। दिति अर्थात खंडित स्वभाव संस्कार वाली। तुम कह सकते हो ये बड़े से बड़े दैत्य हैं। मम्मा ने जब इनको पत्र लिखा था उस पत्र में शायद ऐसे ऐसे अक्षर थे जिन अक्षरों को पढ़ करके उनको बुखार चढ़ गया। मम्मा ने बात तो ठीक लिखी हुई थी, भगवान वाच है, मैंने तो कब नहीं कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूं। हर एक मनुष्य गुरु में मैं व्यापक हूं। मैं तो एक हूं और एक व्यापी ही हूं। एक ही मुकरर रथ में संसार में प्रत्यक्ष होता हूं, उसके बावजूद भी उस रथ के द्वारा मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, मैं शिव हूं, मैं गीता का भगवान हूं, ब्रह्मा हूं। फिर कौन कहता है? पहले पहले कौन कहता है इस संसार में कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं शिव हूं? कौन कहता है? न कोई प्रूफ, न कोई प्रमाण। भक्ति मार्ग में भक्त लोग हरेक गुरु के पीछे तालियां बजाते रहते हैं, सत्य वचन महाराज बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही अंधश्रद्धा का मार्ग। प्रूफ प्रमाण तो कुछ भी नहीं। तुम बच्चे तो हो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। अभी तुम जानते हो कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी होकर आता हूं। मैंने ही राजयोग सिखाया है और कहता हूं कि राजयोग से तुम बच्चों को नंबरवार विश्व का मालिक बनाता हूं। जब एक बार मालिक बन जाते हो तो वहां इस राजयोग की, इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से सदैव के लिए तुम देवता बन जाते हो, अर्थात तुम बाप का वर्षा पाए लेते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा पाए जाते हो। सन्यासी तो इन बातों को जानते ही नहीं है, तो बाप ही जानते हैं। जो जानते हैं वो तुम बच्चों को बताते हैं और इसमें कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं है। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो, इस देह को भूलते जाओ। देह पांच तत्वों का पुतला है, पांच तत्व जड़ होते हैं। तुम जड़ नहीं हो, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। तो अपने चैतन्य स्वरूप को जानना चाहिए ना, उसे याद में टिकना चाहिए ना। तुम घड़ी घड़ी अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझते हो, देह भान में आते हो, तो देह के सुखों की ओर बुद्धि दौड़ती है। अभी तुमको तो अतीन्द्रिय सुख पाने वाला बनना है, इन इंद्रियों के सुखों की ओर जब तक दौड़ते रहेंगे तब तक अतीन्द्रिय सुख की महसूसता नहीं होगी। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा हूं, मैं पांच तत्वों का पुतला देह नहीं हूं। देह समझने से वे ज्ञान नहीं उठा सकेंगे। देह जड़त्वमयी है, तुम आत्मा तो मन बुद्धि चैतन्य स्वरूप हो। चैतन्य आत्मा में ज्ञान बैठेगा, तो जड़ देह समझने से ज्ञान थोड़ा ही बैठेगा। नहीं समझते हैं तो कहेंगे ये भी भावी। अभी तुम समझते हो, पहले हम रावण राज्य में थे, अभी फिर से राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ, देहार्थ नहीं, शरीरार्थ नहीं। ये शरीर इस एक जन्म के लिए है, पुरुष आत्मा को कहा जाता है। पुरु माने पूरी, श माने शेते, इस शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, आनंद लेने वाली, सुख भोगने वाली आत्मा है, उसे पुरुष कहा जाता है। तो आत्मा के लिए तुम जो कुछ करते हो वो तुम्हारी अनेक जन्मों की कमाई होती है। इस देह के लिए जो भी करते हो वो सिर्फ कितने जन्म के लिए? एक जन्म के लिए होता है। जानते हो अभी हम कलयुगवासी नहीं हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं, ऐसे युग के वासी हैं जहां पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं इस संसार के बीच में प्रत्यक्ष होने वाली है। उन उत्तम उत्तम आत्माओं के बीच में हमारा कौन सा उत्तम स्टेज है, हमारा कौन सा नंबर है, ये बात बुद्धि में आनी चाहिए। बल तुम अपने घर में भी रहो, नहीं तो इतने सारे बाप के पास कहां आकर रहेंगे। ब्राह्मण बनकर भी ब्रह्मा के पास सब नहीं रह सकते हैं, रहना भी अपने अपने घर में है। और बुद्धि से समझना है कि अभी हम शूद्र नहीं हैं, हम तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अभी हम शूद्रों की दुनिया से धीरे धीरे अपने को डिटैच करते जाते हैं, कोशिश करते हैं हमारी बुद्धि उन शूद्रों से दूर ही बनी रहे। उनके साथ में रहेंगे तो कुछ न कुछ खिचपिट होती रहेगी, उनके संग का रंग हमारे ऊपर लगता रहेगा, क्योंकि उनका संग हमारे ऊपर क्यों लगता रहेगा, हमको भगवान पढ़ाता है, सर्वशक्तिवान पढ़ाता है, तो हमारा संग उनके ऊपर लगना चाहिए या उनका संग हमारे ऊपर लगना चाहिए है? नहीं, एक भगवान ही है, वो ही एक ऐसी आत्मा है जिसको संग का रंग नहीं लगता है। बाकी जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबको मेजॉरिटी का संग लगता है। अरे एक दो हो उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर भी लें, इस दुनिया में शूद्रों की संख्या कितनी है? सारी दुनिया शूद्रों की है। संघौ शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में जिनका ज्यादा बड़ा संगठन होता है उनके ही वाइब्रेशन काम करते हैं, उनके वाइब्रेशन से सब प्रभावित होते हैं। तो फिर हमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम ब्राह्मणों का ऐसा संगठन तैयार हो जिसमें कोई भी शूद्र कोई भी विकारी प्रवेश न कर सके। बाप कहते भी हैं आगे चल करके तुम ब्राह्मण बच्चों का ऐसा परिवार तैयार हो जाएगा जिसमें एक भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। तो अभी इस दुनिया में शूद्रों की मेजॉरिटी है, तुम ब्राह्मणों को अपनी दुनिया ही तैयार करनी चाहिए। तुम ब्राह्मण अभी इस दुनिया में माइनॉरिटी हो, वो शूद्र तो मेजॉरिटी है। इतने बड़े शरीर में चोटी का हिस्सा तो बहुत छोटा होता है और तुम तो ब्राह्मण चोटी हो, मुट्ठी भर हो। तो घर गृहस्थ में रहते हुए शरीर निर्वार्थ धंधा आदि करते हुए भी अपनी मन बुद्धि को एकाग्र रखना है। इसके लिए सिर्फ अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सोचो पहले हम क्या थे जब बाप के संग के रंग में थे और अभी हम क्या बन गए हैं जबकि दैत्यों के संग में आ गए हैं। अभी हम पुराने राज्य में बैठे हुए हैं, अभी फिर बाप हमको ले जाते हैं नए राज्य में। तो गृह व्यवहार में रहते हुए वो अवस्था जमानी है। तुम बच्चों की नंबर वार अवस्था जमेगी, फिर छटनी होगी, छाटा छूटी होती रहेगी, मालाएं तैयार तो होंगी ना। कोई कोई होंगे अच्छे अच्छे पुरुषार्थी जो निकल आवेंगे। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनमें से कोई कोई ठहरे, बाकी तो सब चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम भी पहले अपने राज्य में थे, अभी हम कहां आकर के पड़े हैं, फिर हम अपने राज्य में जाते हैं। हमने 84 का चक्र लगाया, अभी फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम देखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर बच्चा था, फिर अभी आता ही नहीं है। नहीं आते हैं गोया विकार में गिर पड़े। फिर ज्ञान की वो धारणा नहीं हो सकती है। उन्नति के बदले और ही पाई पैसे का पद पाए लेंगे। पाई पैसे का पद है प्रजापद, उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, बड़े बड़े साहूकार, कोई सेकंड क्लास प्रजा, छोटे छोटे साहूकार, कोई थर्ड क्लास प्रजा, कोई फोर्थ क्लास भी बन पड़ते हैं। तो देखो कहां राजा और कहां ये नीच। जो प्रजापद वाले होते हैं उनको राजा की भरी ढोनी पड़ती है। तुम ये बातें समझ सकते हो। 17 अगस्त 1968 की वाणी का तीसरा पेज, ये तो जानते हो कि नई दुनिया में भी सुख तो होता ही है, परंतु फिर भी पद के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। बड़ा कौन और छोटा कौन, बड़ा पद कौन कौन पा सकते हैं वो तुम अभी भी समझ सकते हो। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र वाला वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। वो तो पाई पैसे का किंग है। और ये तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। किसकी तरफ इशारा किया? पुरुषार्थ ऐसा है जो कि विजयमाला में जा सकता है। उस समय जिस महेंद्र के सामने बैठे बैठे बात कर रहे थे वो आगरे का महेंद्र तो अभी शरीर छोड़ गया। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने ही दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कोई क्रिमिनल काम तो नहीं करती हैं। कुछ न कुछ क्रिमिनल काम होता ही रहता है। ऐसे अभी कोई नहीं कह सकता कि हमारी आंखें क्रिमिनल काम नहीं करती हैं। सिविल आई बन जावे फिर और क्या चाहिए। बल विकार में नहीं जावेंगे, परंतु फिर भी आंखें कुछ न कुछ धोखा देती रहेंगी जब तक कि कर्मातीत अवस्था हो जावे। नंबर वन, ये काम की क्रिमिनल आई बहुत खराब है, इसलिए ही नाम है क्रिमिनलाइज्ड, सिविलाइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते हैं कि ये कितना क्रिमिनलाइज्ड है, कितना सिविलाइज बना है। ये बच्चा क्या क्या काम करते हैं, کتنی سروس کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کی کرمنل آئی ابھی تک گئی نہیں ہے، باپ کے پاس تو سب کے گپت سماچار آتے رہتے ہیں، آگے چل کر کے اور بھی ایکوریٹ بتاتے رہیں گے، بچے خود بھی محسوس کریں گے کہ ہم تو اتنا سمے تک جھوٹ بولتے رہے، خود ہی گرتے رہے، گیان پورا بدھی میں بیٹھا نہیں ہے، تو باپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے چل کر کے سمجھتے جائیں گے کہ کیا کارن بنا جو ہماری اوستھا بنتی نہیں ہے، باپ سے ہم چھپاتے رہے۔ ایسے بہت ڈھیر کے ڈھیر ہیں جو چھپاتے ہی رہتے ہیں، نہیں تو اس روحانی سرجن سے اپنی بیماری چھپانی نہیں چاہیے، سچ سچ بتا دینا چاہیے کہ ہماری بدھی کہاں کہاں جاتی ہے۔ شیو بابا کی طرف بالکل نہیں جاتی، بتاتے نہیں ہیں تو پھر بدھی کو پاتا رہتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم کو بابا کا چہرہ ہی یاد نہیں آتا۔ ابھی باپ سمجھاتے ہیں بچے دیہی ابھیمانی بنو، اپن کو آتما سمجھو، بھائی بھائی سمجھو، پہلے تم کتنے سکھی تھے جبکہ تم پوجی تھے، ابھی تو تم پجاری دکھی بن گئے ہو، بھکتی کرتے کرتے تم پورے ناستک بن گئے ہو، ناستک ارتھات جس کی کوئی پراستھا نہیں ٹکی، بھکتی میں بدھی بھاگتی رہتی ہے، بدھی کو ٹھکانا ہی نہیں ملتا کیونکہ سرو ویاپی کا گیان پھیلا ہوا ہے، کہاں کہاں بدھی بھاگتی رہتی ہے، ایک ویاپی کا بدھی میں گیان بیٹھے تو بدھی ایکاگر بھی بنے، پھر کہیں گے آستک۔ سب کہتے ہیں یہ گرہست آشرم تو پرمپرا سے چلتا چلا آیا، کیا رام سیتا کو بچے نہیں تھے، وہاں بچے نہیں ہوتے ہیں کیا؟ ارے وہ رام سیتا وہ رادھا کرشن تو ہیں ہی سمپورن نروکاری، ان کی کرمیندریوں سے کوئی وکرت کرم ہوتا ہی نہیں ہے، بھی مانے وپریت، کاری مانے کرم کرنے والا، سریمت کے وپریت دکھ دینے والا کوئی بھی اندریوں سے کرم نہیں ہوتا، تو ان کو وکاری کیسے کہیں گے؟ وہاں تو برشت آچرن کرنے والی اندریاں کام ہی نہیں کرتی، وہاں بھرشٹاچار کی پیدائش ہی نہیں ہے، کہیں گے وہاں وکار ہوتا ہی نہیں، وہاں یہ راون کا راج نہیں ہوتا ہے، تم بنا ارتھ سمجھ کر کے بکتے رہتے ہو، بولو تمہیں بھرشٹاچاری اور شیشٹاچاری کے ارتھ کا ہی پتہ نہیں ہے، अपन को कोई समझते नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। अभी तुमको तो पता पड़ा है, वो भक्त तो रावण को जलाते रहते हैं, कब से जलाते आए हैं।
तो नहीं,
क्या द्वापर के आज से ही रावण जलाना शुरू कर दिया? क्यों? हाँ, दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रदान होती है। पहले रावण राज्य में भी इतना दुख नहीं था, बाद में रावण भी अति तमो प्रधान जब बना, बहुत दुख देने लगे, तो उनका पुतला जलाते हैं। जलाते तो हैं, परंतु जलता ही नहीं है, और ही बड़ा रूप धारण करता जाता है। ये समझते नहीं है कि अभी तक भी रावण का राज्य है। हम ब्राह्मणों के ऊपर किसका राज्य है? तथाकथित ब्राह्मणों का राज्य है, उन पर रावण का राज्य, हमारे ऊपर राम का राज्य। अरे राम का राज्य अपनी रानी के ऊपर भी नहीं है अभी। अभी सबके ऊपर रावण का राज्य है। बुद्धि थिरकती रहती है, माया एकाग्र बनने नहीं देती है, निश्चय बुद्धि बनने नहीं देती है। एक व्यापी बाप, ये बात बुद्धि में टिकने नहीं देती है। इसलिए गायन है, निश्चय बुद्धि विजयते। किस बात पर विजय होती है? विकारों पर विजय महसूस होती है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। अपने अपने को पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर अभी तक किसका राज्य है। वहां तो होता है राम राज्य, वहां रावण कहां से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट्ट खाते में चली गई है। ये बुद्धि को चट्ट किसने किया? किसने किया? रावण कौन? मुरली में भी पूछा, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये देहदारी धर्मगुरु। इन्होंने हमारी बुद्धि को चट्ट खाते में डाल दिया। शिवो हम कह करके इन्होंने जो शास्त्र बनाए, उन शास्त्रों ने भी हमारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मैंने तो तुम्हारा बेड़ा पार किया है, सतो प्रधान बनाया है। बेड़ा बाने है? बेड़ा किसे कहा जाता है? शंकर चाप जहाज, यही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। सिखों में कहते हैं नानक चाप जहाज, चाप कहो, बेड़ा कहो, जहाज कहो, जिसकी स्मृति पर सवार हो करके आत्माएं पार चली जाती है। विषय वैतरणी कहो, संसार सागर कहो, इस विषय सागर के उस पार चली जाती है, क्षीर सागर में। मैं ने तुम्हारा बेड़ा पार किया है। ये शरीर रूपी बेड़ा इस वेतह विषय वैतरणी नदी को क्रॉस करके क्षीर सागर में अनुभव करेगा, फिर अपने से पूछो कि हमारा बेड़ा डुबोया किसने। विषय सागर में या विषय वैतरणी नदी में किसने धकेला, कहेंगे रावण। परंतु तुम भूल गए, कहते हैं ये तो परंपरा से चला आया है, राम सीता राधा कृष्ण उनको भी बच्चे थे, वो भी विषय सागर में गोते खाते थे तब बच्चे पैदा करते थे। तो क्या कहें, परंपरा से चला आया या कोई डुबोने वाले निमित्त बने, कोई डुबोने वाले निमित्त बने। अगर परंपरा से कहें तो भी कब से, कोई हिसाब तो बतावे, कुछ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं कि मैं तो तुमको राजभाग दे करके गया था, नई दुनिया का राजभाग दे करके गया था, क्षीर सागर में ले गया था, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो। घड़ी घड़ी बुद्धि में विषय वासनाएं जागृत हो जाती हैं, नहीं तो पहले तुम भारतवासी बहुत सुखी थे, और कोई धर्म वाले कोई धर्मखंड वाले वहां नहीं थे, तुम ही सुखी थे। वो क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं भारत में पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के मिलते हैं, इन देवताओं के चित्रों से ज्यादा पुरानी चीज तो कोई मिली ही नहीं है। सबसे पुराने से पुराना कौन से देवता का चित्र मिला है, नग्न मूर्ति शंकर की मिली है, जिसको कहते ही हैं महादेव। पुराने से पुराना चित्र है, पुराने से पुरानी मूर्ति है, फिर कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण पुराने से पुराने हैं। कोई कहेंगे सबसे पुराने से पुराना कृष्ण है, तो जरूर कहेंगे नए से नया कृष्ण होगा। पुराने से पुराना क्यों कहते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। अभी बाप समझाते हैं कि तुम ही गोरे थे, फिर तुम अभी सांवरे बने हो, कृष्ण इतना गोरा नहीं था, कृष्ण इतना सांवरा नहीं बनता है, लेकिन तुम सांवरे से सांवरे बनते हो और तुम गोरे से गोरे बनते हो। क्यों, क्योंकि कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। क्रिश्चियंस न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं, तुम भारतवासी ही अति काले बनते हो और अति गोरे बनते हो। ओम शांति।